भट्टी में दानियेल और उसके साथी। अध्याय 3, मूर्ति की प्रतिष्ठा। राजा नबूकदनेज़र ने 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी एक सोने की मूर्ति बनवाई। उसने उसे बाबुल प्रांत के दूरा नामक मैदान में स्थापित किया। तब राजा नबूकदनेज़र ने क्षत्रपों, अध्यक्षों, राज्यपालों, मंत्रियों, कोषाध्यक्षों, न्यायाधीशों, दंडाधिकारियों और प्रांत के सभी अधिकारियों को बुला भेजा, जिससे वे आकर नबूकदनेज़र द्वारा स्थापित मूर्ति की प्रतिष्ठा में उपस्थित हों। अतः क्षत्रप, अध्यक्ष, राज्यपाल, मंत्री, कोषाध्यक्ष, न्यायाधीश, दंडाधिकारी और प्रांत के सभी अधिकारी नबूकदनेज़र द्वारा स्थापित मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे होकर राजा नबूकदनेज़र द्वारा स्थापित मूर्ति के सामने खड़े हो गए। तब उद्घोषक ने उच्च स्वर से घोषणा की, विभिन्न भाषा भाषी जातियों और राष्ट्रों, आदेश है कि जो ही नरसिंघा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, शहनाई और अन्य प्रकार के बाजे सुनाई पड़े, तुम मुंह के बल गिर जाओगे और राजा नबूकदनेज़र द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना करोगे। जो कोई मुंह के बल गिरने और आराधना करने से इनकार करेगा, वो तत्काल धधकती हुई भट्टी में झोंक दिया जाएगा। अतः ज्यो ही सब लोगों ने नरसिंघा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और अन्य प्रकार के बाजों की आवाज सुनी, त्यों ही विभिन्न भाषा भाषी जातियां और राष्ट्र मुंह के बल गिरकर नबूकदनेज़र द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना करने लगे। यहूदियों को दंडाज्ञा। उसी समय कुछ खलदेइयों ने राजा के पास आकर यहूदियों पर आरोप लगाया। उन्होंने राजा नबूकदनेज़र से कहा, महाराज चिरायु हों, महाराज आपने तो आज्ञा दी थी कि ज्यों ही नरसिंघा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और अन्य प्रकार के बाजों की आवाज सुनाई पड़े, त्यों ही सभी मुंह के बल गिरकर सोने की मूर्ति की आराधना करें, और जो कोई मुंह के बल गिरकर आराधना न करे वो धधकती भट्टी में डाल दिया जाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक यहूदी हैं, जिनको आपने बाबुल प्रांत के प्रशासनिक कार्यों का अधिकारी नियुक्त किया था। महाराज, ये लोग आपकी आज्ञा की उपेक्षा कर रहे हैं। वे आपके देवता की सेवा नहीं करते और न उस सोने की मूर्ति की आराधना करते जिसे आपने स्थापित किया था। इस पर नबूकदनेज़र का क्रोध भड़क उठा और उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने सामने उपस्थित करने की आज्ञा दी। उन्हें राजा के सामने उपस्थित किया गया। नबूकदनेज़र ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग न तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, बंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने को तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेज़र को ये उत्तर दिया, राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वो हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वो हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान लें कि हम न तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। ये सुनकर नबूकदनेज़र शद्रक मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दें। तब अपने पायजा में अंगरखे टोप और अन्य वस्त्र पहने ही ये लोग बांधे और धधकती भट्टी में डाल दिए गए। राजा के दुराग्रह के कारण भट्टी की आग इतने जोर से धधक रही थी कि जिन आदमियों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया था वे भस्म हो गए और शद्रक मेशक और अबेदनगो तीनों बंधे बंधाए धधकती भट्टी में गिर पड़े। भट्टी में अजर्या का भजन। ईश्वर की स्तुति गाते हुए और प्रभु का गुणगान करते हुए वे लपटों के बीच टहलने लगे। अजर्या खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा और उसने आग की लपटों के बीच ये कहना आरंभ किया, हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तूने हमारे साथ जो कुछ किया उसे तूने न्याय के अनुसार किया। तेरी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती हैं, तेरे मार्ग सीधे और तेरे विचार उचित होते हैं। हमारे पूर्वजों के पावन नगर यरूशलेम पर और हम पर जो विपत्तियां तूने पहुंचाई हैं वे न्याय संगत हैं, क्योंकि हमने पाप किए हैं। हमारे अपने पापों के अनुसार तूने हमारे साथ उचित व्यवहार किया है, क्योंकि हमने पाप किया, तुझे त्याग कर कुकर्म किया और हर तरह के अपराध किए। हमने तेरी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया, न उनका पालन ही किया और न तेरे आदेशानुसार अपने हित के ही काम किए। हम पर जो घोर विपदा तूने ढा दी है और हमारे साथ जो कुछ किया है ये सही और न्याय संगत है। तूने हमें ऐसे शत्रुओं के हाथों सौंप दिया है जो अन्यायी और अधर्मी हैं, ऐसे दुष्ट राजा के हाथों जो सबसे अन्यायी है। अब हम अपना मुंह तक खोलने का साहस नहीं कर सकते, तेरे भक्त सेवाओं को लज्जा और अपमान सहने पड़ते हैं। तू अपने नाम का ध्यान रखकर हमें सदा के लिए न त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द न कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक और अपने भक्त इज़राइल का स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से न हटा। तूने उनसे ये प्रतिज्ञा की थी कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के रेत कणों की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो न राजा है, न नबी, न नेता, न होम, न यज्ञ, न बलि, न धूप दान, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेंढों, सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हों, आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। हमें निराश न होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। जो तेरे सेवकों का बुरा करते हैं वे सब लज्जित हों, वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, वे निराश हो जाएं और उनकी शक्ति टूट जाए। वे जान जाए कि प्रभु तू ही एक अनन्य ईश्वर है और तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर व्याप्त है। इस बीच राजा के नौकर, जिन्होंने उन्हें भट्टी में डाल दिया था, भट्टी में तेल, डामर, सन के रेशे और ईंधन झोंक रहे थे। आग की लपटें भट्टी से 49 हाथ ऊपर उठ रही थीं और उन्होंने फैलकर आसपास खड़े खलदैयों को भस्म कर दिया। किंतु अजर्या और उसके साथियों के साथ प्रभु का दूत भी भट्टी में उतर आया। उसने आग की लपटें बाहर की ओर चला दी और भट्टी के बीचों बीच ऐसी ठंडी हवा भर दी जैसी ओस भरी भोर में चलती है, इसलिए आग उन्हें छू तक नहीं पाई, न ही उन्हें कोई हानि या कष्ट हुआ। 3 युवकों का भजन। तब वे तीनों एक स्वर से भट्टी में ही ईश्वर की महिमा और स्तुति इस प्रकार गाने लगे। हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तेरा महिमान्वित पवित्र नाम धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने महिमान्वित पवित्र मंदिर में धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू महागर्त की थाह लेता और केरुबों पर विराजमान है, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों, प्रभु को धन्य कहो। आकाश, प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल, प्रभु को धन्य कहो। विश्व मंडल, प्रभु को धन्य कहो। सूर्य और चंद्रमा, प्रभु को धन्य कहो। आकाश के तारा मंडल, प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस, तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो। पवनों, तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप, प्रभु को धन्य कहो। शीत और ग्रीष्म, प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार, प्रभु को धन्य कहो। ठंड और पाले, प्रभु को धन्य कहो। बर्फ और हिमपात, प्रभु को धन्य कहो। रात और दिन, प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार, प्रभु को धन्य कहो। बिजली और बादलों, प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों, प्रभु को धन्य कहो। पृथ्वी के सब वनस्पतियों, प्रभु को धन्य कहो। झरनों, प्रभु को धन्य कहो। समुद्रों और नदियों, प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरगण, प्रभु को धन्य कहो। आकाश के समस्त पक्षियों, प्रभु को धन्य कहो। सब बनेले और पालतू पशुओं, प्रभु को धन्य कहो। मनुष्य की संतति, प्रभु को धन्य कहो। इज़राइल, प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो, धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो, हनन्या अजर्या और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। उसने तो हमें अधोलोक से छुड़ाया है और मृत्यु के गर्त से बचाया है, उसने धधकती हुई भट्टी में हमें सुरक्षित रखा, अग्नि कुंड में हम निरापद रहे। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के सब भक्तों सर्वोच्च प्रभु को धन्य कहो, उसका स्तुतिगान और गुणगान किया करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है।
राजा की आंखें खुलती हैं। राजा नबूकदनेज़र बड़े अचंभे में पड़ गया, वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, राजा आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सकुशल टहलते देख रहा हूं, चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेज़र ने धधकती भट्टी के द्वार के पास जाकर पुकारा,
शद्रक मेशक और अबेदनगो, सर्वोच्च ईश्वर के सेवकों बाहर निकल आओ।
इस पर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग से बाहर निकल आए। क्षत्रप अध्यक्ष राज्यपाल और मंत्रीगण तीनों को देखने के लिए एकत्र हुए। उनके शरीरों पर आग का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, उनका बाल तक बांका नहीं हुआ था, उनके पायजामे झुलसे नहीं थे, न ही कहीं जलने की गंध तक लग पाई। तब नबूकदनेज़र बोल उठा,
धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का ईश्वर, उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वो उसके उन सेवकों की रक्षा करे जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा या आराधना नहीं करना चाहते थे। इसलिए मैं ये आदेश देता हूं, सभी भाषा भाषी जातियों एवं राष्ट्रों, यदि कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के ईश्वर के विरुद्ध कुछ कहे तो वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस ईश्वर के सिवा अन्य कोई देवता इस प्रकार रक्षा नहीं कर सकता।
तब राजा ने बाबुल प्रांत में शद्रक मेशक और अबेदनगो को बहुत अधिक सम्मानित किया। नबूकदनेज़र का विशाल वृक्ष का स्वप्न। पृथ्वी भर की सभी भाषा भाषी जातियों और राष्ट्रों को राजा नबूकदनेज़र की ओर से संपूर्ण शांति। सर्वोच्च ईश्वर ने मेरे लिए जो चिन्ह और चमत्कार कर दिखाए हैं, मैं उनका वर्णन करना चाहता हूं। कितने महान हैं उसके चिन्ह, कितने अपार हैं उसके चमत्कार। उसकी प्रभु सत्ता चिरंतन है और उसका राज युगानुयुग रहेगा।